तो आप जानना चाहते हैं कि संसार की असारता निश्चय में कैसे बैठे। यदि संसार को हम जिस प्रकार देखते चले आ रहे हैं और सब लोगों का जो संसार के बारे में निश्चय है, हम भी उसी प्रकार देखते हैं, उसी प्रकार हमारा भी निश्चय बना रहता है। वास्तव में संसार क्या है, इसको सही रूप में देखने वाला, इसको सही रूप में जानने वाला केवल गुरु है। इसीलिए वो इस संसार के विज्ञान को हमारे सामने रखता है। जिस प्रकार एटम का स्ट्रक्चर क्या है, हम सारी जिंदगी नहीं देख सकते, लेकिन जिसने एटम पर रिसर्च की है, जो उसका साइंटिस्ट है, वो उस एटम के रहस्य को जानता है। जिस प्रकार एक साइंटिस्ट उस एटम के रहस्य को जानता है, उसी प्रकार जो ब्रह्म ऋषि है, जो सतगुरु है, वो इस सृष्टि के रहस्य को जानता है। और इस रहस्य को जानने के पश्चात ही वो कहता है, जो शरीर है वही संसार है, शरीर करके ही संसार है, शरीर और संसार में कोई अंतर नहीं। आगे जब वो इसका विज्ञान पेश करता है, तो गुरु कहता है कि पांच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसी से संसार बना है और इसी से हमारी देह बनी है। और इस पांच तत्व के साथ साथ इस देह के अंदर मन बुद्धि अहंकार, ये तीन चीजें और हैं। इसको अष्टधा प्रकृति गीता में भी कहा गया है और महाराज जी ने समता विलास में भी लिखा है। ये सब प्रकृति के अंतर्गत आता है। इस प्रकृति का जो मालिक है, जो चेतन सत्ता है, उसका नाम आत्मा है या जीवन शक्ति है या जीवन सत्ता है। उसके कई नाम हम सुनते रहते हैं। तो मैं भी इन्हीं के बंधन में हूं। ये अष्टधा प्रकृति जो है, पांच तत्व का शरीर, मन बुद्धि अहंकार, मैं भी इसी के बंधन में हूं। वो अहंकार कुछ और नहीं, जिसको महाराज जी कर्तापन करके लिख रहे हैं, मूल अहम करके लिख रहे हैं, वही अहंकार है। और वाणी कह रही है, कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव को आवागवन दुख सार। कर्तापन से इस जीव के अंदर वासना पैदा होती है, या यूं कह ले मनुष्य में वासना पैदा होती है। वासना का अनुभव हमको डिजायर्स के रूप में होता है। विभिन्न प्रकार की इच्छाएं जो हमारे मन में पलती हैं, डिजायर्स के रूप में उसका अनुभव होता है। और इन डिजायर्स से फिर ये पांच तत्व की देह और पांच तत्व का संसार प्रकट हो जाता है। ये वासना का फैलाव है। और इसीलिए जब ये वासना खत्म होती है, उस समय मन की सत्ता और संसार की सत्ता भी मूल सत्ता में बदल जाती है, जिसको हम आत्मा कहते हैं या जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। तो सारा संसार जो इतना बड़ा चलता फिरता दिखाई पड़ रहा है, इसका जो मूल तत्व है या इसका जो मूल रूप है, उसका नाम आत्मा है, उसका नाम ब्रह्म है, उसी को हम ईश्वर भी कह देते हैं, उसी को भी चेतन शक्ति भी कह देते हैं। विभिन्न नामों से सत्पुरुष ने उसको पुकारा है, वही परमेश्वर है। तो सारी दुनिया भले उसमें परमेश्वर को नहीं जानती, फिर भी परमेश्वर के पीछे पड़ी रहती है, पूरी दुनिया। अब इस पूरी दुनिया में कितने मोहम्मदंस होंगे, मोहम्मद साहब को सम्मानते, आपस में भरी शिया और सुन्नी लड़ते रहे लेकिन मोहम्मद साहब को सम्मानते, मोहम्मद साहब को मानते हैं इसलिए अल्लाह को ही मानते। इस दुनिया में कितने क्रिश्चियंस हैं, ईसा मसीह को सम्मानते। चाहे क्रिश्चियनिटी में भी कई जिस प्रकार मुसलमानों में भेद हैं, वहां भी भेद हैं, लेकिन ईसा मसीह के बारे में किसी के मन में भेद नहीं है। जब ईसा मसीह को मानते हैं तो गॉड को भी मानते हैं। तो घोर अज्ञानी होने के बाद भी, घोर भोगवादी होने के बाद भी ईश्वर पर कहीं ना कहीं आस्था लोगों की है, क्योंकि शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते, सत्पुरुषों की बात पर चलने वाले नहीं बनते, इसलिए सारी जिंदगी हमारा निर्णय ही नहीं हो पाता, निश्चय ही नहीं हो पाता कि ईश्वर क्या है, मैं कौन हूं, मेरा बंधन क्या है, इस बंधन से मैं मुक्त कैसे होऊंगा, इसका निर्णय ही कोई नहीं हो पाता। जिस कारण से मैं परेशान हूं, संसार में मैं खोज करता हूं कि जिस कारण से मैं परेशान हूं, मेरा पड़ोसी उस कारण से परेशान नहीं है, तो मैं उससे पूछता हूं कि भाई मेरी परेशानी कैसे दूर होगी, तो वो तो उस कारण से परेशान नहीं है, वो आपको कुछ सलूशन बता देता है, आप उसके पीछे लग जाते हो। लेकिन समस्या ये है कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, मैं पूरी जिंदगी परेशान ही रहता हूं, क्योंकि परेशानियां चेंज होती रहती है, उसके आइटम्स चेंज होते रहते हैं, मेरी यथा स्थिति बनी रहती है, जो हालत मेरी बचपन में थी वही जवानी में रहती है और वही बुढ़ापे में हो जाती है। मेरे बारे में सत्य यही है कि मेरे अंदर से असंतोष कभी भी खत्म नहीं हो पाता, और ये आज की बात नहीं है, वैदिक काल से लेकर आज तक ये बात चली आ रही है। ऋषियों ने तो निर्णय कर दिया इसका, उपनिषद में आता है दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तयेत, मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। अब किसी से पूछो, कहेगा मुझे तो जलेबी बड़ी अच्छी लगती है, जलेबी खाने को मिलती है तो बड़ा सुख महसूस होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है, सब कुछ दुख कैसे है? तो दुख इसलिए है वो, क्योंकि जो भी सुख आप भोगते हो वो आगे चलकर दुख में बदल जाता है, हर सुख दुख में बदल जाता है, इसलिए ये सृष्टि जो है वो द्वंद रूप कही आती है। द्वंद का मतलब होता है अपोजिट पोल्स, कि एक दूसरे को नष्ट भी करता है, एक दूसरे का निर्माण भी करता है, दोनों अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, ना सुख स्वतंत्र है ना दुख स्वतंत्र है, सुख के ऊपर दुख निर्भर करता है तो, और दुख के ऊपर सुख निर्भर करता है। अभी आपको भूख बहुत तेज लग गया है तो आपको खाने में कितना स्वाद आएगा, किसी चीज की इच्छा ना हो आपको वो मिल जाए तो आपको पता है क्या खुशी मिलेगी आपको, और बहुत तीव्र इच्छा हो, तीव्र इच्छा तो दुख का कारण है ना, जितनी इच्छा प्रबल होगी उतना आप बेचैन होगे, और जब इच्छा वाली वस्तु आपको मिल जाए तो कितनी खुशी होगी, विचार कर लो, जितना गहरा दुख होगा उतनी गहरी खुशी भी होगी, इसका मतलब खुशी का जन्म दुख से हो रहा है, इसी को द्वंद कहते हैं। तो ये सारी की सारी प्रकृति रचना द्वंद रूप है, हम इन दो में से एक चाहते हैं, मुझे सुख मिल जाए दुख ना मिले, क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत मुझको पता नहीं, गुरु की बात मैंने सुनी नहीं या समझने की कोशिश नहीं की, तो इसीलिए पूरी जिंदगी मैं वहम में जीता हूं, सुख के वहम में, कि मुझे संसार में सुख मिलेगा मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, एक ना एक दिन मेरे जीवन में ऐसा जरूर आएगा कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, वो दिन इस जीवन में कभी नहीं आता, वो आ ही नहीं सकता, यदि आ जाए तो ये चारों वेद गलत सिद्ध हो जाएंगे, चारों वेद गलत सिद्ध हो जाएंगे, फिर ये बात कैसे सिद्ध होगी कि सर्वम दुखम सर्वम अनुस्मृति, मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। इसलिए मनुष्य के जीने का रास्ता क्या बताया गया, काम भोगान निवर्तयेत, कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करो। और संसारियों के जीने का क्या रास्ता है, जिन्होंने ईश्वर के इन वचनों को नहीं पढ़ा, नहीं जानने की कोशिश की, वो कहते हैं संसार में सुख फैले पड़े हुए हैं, लुट रहे हैं सुख, मैं जितनी कोशिश कर लूंगा उतने इकट्ठे कर लूंगा, ये मेरी कल्पना है। तो तू पूरा जन्म अपना इन भोगों को इकट्ठा करने में व्यतीत कर देता है, और उसमें जब सुख है ही नहीं, वो द्वंद्व रूप है, इसका मुझे ज्ञान नहीं है, इसलिए पूरी जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाती है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसमें कुछ भी नहीं बचता। जब बुढ़ापा आता है, मौत का वक्त आपको नजर आने लगता है कि अब तो मौत नजदीकी है, उस समय गहरा पश्चाताप पैदा होता है कि मुझको जिंदगी में मिला क्या, बड़े लक्ष्य निर्धारित किए थे, बड़ी आशाएं तैयार की थी, कुछ पूरी हो गई, कुछ अपूर्ण रह गई, लेकिन जो नेट रिजल्ट निकला वो तो असंतोष है। मैंने एक दुकान खोली, 10 लाख प्रॉफिट हो गए, अगले साल 12 लाख घाटा हो गया, तो नेट बैलेंस शीट क्या बता रही है आपकी, वो 10 लाख के नफे की खुशी होगी या 12 लाख के नुकसान का दुख होगा आपको, आपके पल्ले तो दुखी पड़ा। तो इसीलिए जिसकी बुद्धि गुरु ज्ञान के अनुसार जागरूक है, जिसकी बुद्धि प्रकाशित है अध्यात्म ज्ञान से, तो उसके लिए तो वाणी कह रही है, उस सुख के माथे सिल पड़े जो नाम प्रभु का जाए। जिस सुख की कमाई में प्रभु का नाम लेने की फुर्सत ही मुझे ना मिले, तो उस पर तो लानत है, ऐसे सुख पर लानत है, क्योंकि सुख का तो वहम पाले हुए है, सुख संतोष प्राप्ति के लिए होता है। तो महाराज जी कह रहे हैं, समता विलास में लिखकर कह रहे हैं कि हर जीव संसार में संतोष की खातिर यत्न प्रयत्न कर रहा है, परंतु किसी को भी संतोष मिल नहीं रहा। हम में से जिसकी आयु 50 हो गई होगी या 50 क्रॉस कर गई होगी, जरा दिल पर हाथ रख के देखें, अपने जीवन से संतुष्ट हो, कहेगा हाँ कुछ काम तो हो गए मेरे, जिनकी मेरी तमन्ना थी, अभी कुछ रह गए, तो असंतोष तेरा वहीं खड़ा हुआ है। कल का तो ये पता नहीं है, मौत आने वाली है या नहीं आने वाली, तो क्या सेंचुरी पूरी करके संतोष की आशा कर रहा है तू, तो क्या तेरी भरी जवानी के अच्छे दिन तो 50 साल तेरे निकल गए, संतोष तो आज अभी भी नहीं आया, कल को तेरा पता नहीं है जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, क्या लेके जाएगा संसार से, असंतोष लेके जाएगा ना। तो अब बताइए कि गुरु ये बात कह रहा है, सारे शास्त्र ये बात कह रहे हैं, और गीता भी ये कह रही है कि भोगवाद, हम तो भोगवाद के पीछे पड़े हुए ना, वस्तुओं के भोगने के पीछे पड़े हुए हैं, इसको रजोगुण कहते हैं, और गीता कह रही है रज सहा तू फलम दुखम, रजोगुण का जो परिणाम है, जो नतीजा है, वो दुख है। तो मेरा देश यदि बहुत प्रगति कर गया, महाभोगवादी बन गया, सारी दुनिया के साजो सामान यहां बनने लगे, तो याद रखिए इस देश के मिटने के दिन बहुत नजदीक आ गए, इसके मिटने के दिन बहुत नजदीक आ गए। जब भोगवाद चरम सीमा पर होता है तो उसका सर्वनाश के दिन बहुत नजदीक आ जाते हैं। और यही विश्व का इतिहास बता रहा है, इंग्लैंड में भोगवाद चरम सीमा पे बढ़ा, पूरी दुनिया में उसका सूर्यास्त नहीं होता था, अर्थात हर जगह उसने राज्य किया, इसलिए कहीं ना कहीं उसके राज्य में सूर्योदय होता ही रहता था, उसका सूर्यास्त नहीं होता था। लेकिन जर्मनी का भी विकास हुआ, उसका भी भोगवाद बढ़ा, हिटलर का दिमाग खराब हो गया, तो भोगवाद में दिमाग खराब होना ही है किसी का भी हो, विश्व युद्ध हो गया, इंग्लैंड का क्या हाल हुआ, हिंदुस्तान पर भी राज्य करता था वो, सारी दुनिया से सिमट कर एक जगह आ गया। और उसके देश के अंदर यह हाल था कि घर का जो लोहे का सामान होता था ना, किसी ग्रिल लगी है, खिड़की लगी है, वो भी गवर्नमेंट ने निकलवा के पिघला के उसके बम बनाने शुरू कर दिए। लोहा तक नहीं बचा उसके पास, इंग्लैंड के पास। विश्व युद्ध में उसका यह हाल हो गया। फिर जर्मनी का क्या हाल हुआ, उसका भोगवाद कहाँ गया, वो भी दो भागों में बट गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। तो पूरी दुनिया का इतिहास उठा के तो देखो कि जो भोगवाद के क्लाइमेक्स पे पहुंचा उसकी बर्बादी हो गई। इसलिए सत्पुरुष जीने के बारे में कहते हैं, तू मर्यादा में जीना सीख। इस मर्यादा में जीने का नाम ही सादगी और कुछ नहीं। भोग भोगने के ख्वाब मत देख तू, और बच्चों के लिए भी ख्वाब मत देख कि ज्यादा पैसा कमाएंगे, नहीं, सारी सुविधाएं होंगी, बड़े भाग्यवान होंगे। वो भाग्यवान नहीं होंगे, भाग्यहीन होंगे। जिनको भोगने को ज्यादा मिल जाएगा वो भाग्यहीन होंगे, क्योंकि उनका जीवन का पतन होना ही होना। भोगों से मन स्ट्रांग हो जाता है, बुद्धि मंद पड़ जाती है। उसके अंदर ऐसी बुद्धि में आत्मनिश्चय नहीं आता। इसलिए अमीर लोगों का रास्ता ईश्वर से होके नहीं जाता, क्योंकि भोग इतने गहरे उनके मन में बैठ जाते हैं कि ईश्वर की बात तो समझ ही नहीं आ सकती। दुनिया ही सब कुछ है, इससे ऊपर उनका निश्चय नहीं उठ पाता। तो इसीलिए मैंने जब तक इस विज्ञान को उस प्रकार से नहीं, जब तक मैंने नहीं समझा जिस प्रकार से शास्त्र कह रहे हैं, तब तक मैं इस निश्चय पर कभी नहीं पहुंच पाऊंगा कि संसार असार है। इसमें सार कुछ है ही नहीं। सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल, वाणी कह रही है। जैसे रात का स्वप्न है, अभी जागने पर आपसे पूछा जाए कि स्वप्न की रचना कैसी है आपकी, कहोगे वो तो असार है। क्यों असार है भाई, वो तो मन का संकल्प मात्र था, जागने के बाद वो खत्म हो गई। तो सत्पुरुष भी कहते हैं, ये जीव जब अंतर्यामी ईश्वर में जागता है, अंतर्यामी आत्मा का अनुभव करता है, उस समय संसार की सत्ता का नाश हो जाता है, ये रहती नहीं। सारी सृष्टि में केवल चेतन सत्ता रहती है, जिसको ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म जब प्रकट होता है तो ब्रह्म गायब हो जाता है। तो ये अनुभव की बात है, ये थ्योरी की बात नहीं है, सत्पुरुषों के अनुभव की बात। नहीं तो मीरा ये बात क्यों कहती, जित देखूं उत और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। क्या मतलब हुआ इसका, इसका क्या मतलब? गीता में ये क्यों लिखा होता, सर्वम वासुदेव, सब कुछ वासुदेव ही हो जाता है। सारे शास्त्र तो कुछ और बात कह रहे हैं, संसारी लोग कुछ और बात कह रहे हैं। तो संसार असार है, ये संसारियों के लिए बात नहीं है, ये उन लोगों के लिए बात है जो ईश्वर मार्ग पर चलना चाहते हैं। इसलिए हम कभी भूल के भी दुनिया के सामने ये बात ना कर दें कि संसार असार है, ये तो कल्पना मात्र है, ये तो स्वप्न जैसा है। तो वो यही कहेंगे, ये महामूर्ख कहां से आ गया हमारे सामने। वो पूछेगा आपसे कि मैं तुम्हें दिखाई पड़ रहा हूं, नहीं पड़ रहा हूं, क्योंकि हाथ पड़ रहे हो, तो ये मैं कल्पना कैसे हो गया, क्या जवाब दोगे उसका, उसका आप क्या जवाब दोगे? तो ये बातें संसारियों के बीच में करने के लिए नहीं है, ये उन लोगों के बीच में करने के लिए है जो अध्यात्म मार्ग पर चलना चाहते हैं, जिनके अंदर ईश्वर का निश्चय है। कहते हैं मुझे पता नहीं ईश्वर क्या है, लेकिन है जरूर। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं वो भाग्य विधाता भी है, कर्म की सजा भी देता है, अच्छे कर्मों का इनाम देता है और बुरे कर्मों की सजा देता है। ये निश्चय जिनके अंदर है, उनसे ये बातें की जा सकती। तो इसीलिए सार जो हम संसार में देखते हैं, सार क्या है इसमें? एक वचन में कहा जाता है सुख ही सार है। यदि आपको पता लग जाए संसार में सुख नहीं मिलने वाला, तो आप में से कई लोग कहोगे मैं तो सुसाइड कर लेता हूं। अरे जहां दुख ही दुख मिले जीने का क्या फायदा? फिर आदमी इसलिए जीता है ना कि आज भले ही दुख मिल रहा है कल को सुख मिलने की आशा है। जहां पता लग जाए यहां दुख ही दुख है, मैं जी के क्या करूंगा फिर? क्योंकि संसार में दुख है इसलिए असार है, इसमें कोई सार ही नहीं। जिस फल में रस ना हो वो फल सारहीन है या नहीं है? लेकिन ईश्वर में सार है, उसका नाम ही सच्चिदानंद है। सत कहते हैं उसको जो हमेशा रहता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। चित कैसे है? कहते हैं उसको जिसमें होश है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है, जो जानने वाली सत्ता है। आनंद उसका गुण है, वो आनंद रूप है। जिसको भी ईश्वर का बोध होगा उसके मन के अंदर प्रसन्नता का कोई अंतहीन सिलसिला चालू हो जाएगा। उसके मन में प्रसन्नता प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी, क्लेश सा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ईश्वर को सच्चिदानंद कहा जाता है। तो आप बताइए मुझे, जो आनंद रूप है वो आपकी देह के अंदर मौजूद है, लेकिन उस आनंद को भोगने के लिए ये विषयानंद जो है ना, ये बाहर का विषयों का आनंद, ये त्यागना पड़ता है। एकदम से नहीं, एक स्थिति आपकी ऐसी आ जाती है कि बाहर का अट्रैक्शन आपका मन का कम हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता, कम हो जाता है। और अंदर आपने गुरु मंत्र का जाप करते करते मन की सफाई काफी कर ली है। तो ऐसी स्थिति जब आपके अंदर आती है तो आपके अंदर आत्मानंद आपको पकड़ लेता है, उसके फ्लैशेस, उसकी रेज आपको टच करने लगती है, उसका थोड़ा थोड़ा आनंद आपको मिलने लगता है। तो पक्का निश्चय हो जाता है कि जो शास्त्रों में पढ़ा था वो सत्य है। तो फिर आपके अंदर एक उमंग आती है, एक हिम्मत आती है नहीं, कि भाई मैंने इस मार्ग पर चलना ही चलना है। और जैसे जैसे संसार में आपके अंदर सादगी आती है, पैर अपने सिकोड़ते हो, आप खुद देखते हो कि आपकी चेतन कम हो गई, कितना फंसा पड़ा हुआ था मैंने, वो सारी जो है वो चिंता फिक्र जो है मेरी काफी कम हो गई। तो इधर तो संसार में भी चैन मिल रहा है आपको कंपैरेटिवली, पहले कितना बेचैन था जब केवल संसार के लिए जीता था, अब करतार के लिए जी रहा हूं, संसार का काम चला रहा हूं, तो संसार में कितना चैन है पहले के मुकाबले में, वहां भी पता लग जाता है। और अंदर जो मन परेशान करता था मुझे डे और नाइट, तो उस मन में भी कितना चैन है, किसी चीज की चाह ही नहीं करता अब ये ईश्वर की चाह करता है। तो ये जो आपके अंदर परिवर्तन आता है, ये आपको फिर ईश्वर की तरफ तेजी से चलने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन प्रारंभ कहां से होगा? प्रारंभ तो आपका गुरु श्रद्धा से ही होगा। जिस ईश्वर को आपने देखा नहीं, वह ईश्वर आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपके वहम मिटाने के लिए, आपकी बुद्धि के निश्चय को दुरुस्त करने के लिए वो गुरु रूप में प्रकट हुआ है। गुरु रूप में प्रकट होकर उसने सारा ज्ञान वाणी के रूप में, शास्त्र के रूप में प्रकट किया है। क्या मैंने साधना करनी है, कैसे मैंने संसार में रहना है, कैसे मैंने परिवार चलाना है, कैसे मैंने ईश्वर भक्ति करनी है, कैसे मैंने अपना मन का मैल मिटाना है, कैसे बुद्धि को प्रकाशित करना है अध्यात्म विद्या से, हर चीज के बारे में वो खुला निर्णय छोड़ कर जाता। तो ऐसे गुरु पर जब हमारी श्रद्धा आती है तो उसकी हर बात को हम सीखने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार एक स्टूडेंट जो सिक्स क्लास में पढ़ रहा हो, मान लिया اس کو انٹرمیڈیٹ کی میتھمیٹکس کی کتاب دکھا دیا ہے, تو کہے گا باپ رے باپ, یہ میتھمیٹکس اتنی کٹھن ہے, وہ ڈر جائے گا. لیکن ایک ایک کلاس پاس کرتے 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 جب انٹر میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہاں یہ تو میں سیکھ سکتا ہوں. کوئی اسٹوڈنٹ دیکھا کہتا ہے میں نہیں سیکھ سکتا, کہتا ہے کوشش کرو تو سیکھ سکتا ہوں. تو اسی پرکار جو گرو کی باتیں ہم کو کٹھن لگتی ہیں, گرو کا جیون بڑا کٹھن لگتا ہے, کیونکہ مہاراج جی تو 9 سال کی ایج میں گھر چھوڑ کر رات میں انہوں نے جنگل میں جانا شروع کر دیا تھا. تو میں یدی سوچنے لگوں کہ ایشور کی کھوج کرنی ہے مجھے بھی 9 سال کی ایج میں جنگل میں جانا پڑے گا, تو کٹھن کام نہیں ہو گیا؟ کون کہہ رہا ہے تم سے جنگل میں جانے کو؟ تو گرو کی جو کرنی دیکھو گے یدی آپ, تب دیکھو گے تو ڈر جاؤ گے. پھر آپ اسی پرکار ڈر جاؤ گے جیسے 6th class کا ودیارتھی انٹر کی کتاب دیکھ کے ڈر جاتا ہے. تو بدھی سے کام لینا پڑتا ہے, یہ سوچنا پڑتا ہے کہ گرو اپنی نقل کرنے کو نہیں کہہ رہا. مہاراج نے ایک جگہ بھی نہیں کہا کہ تم ان کی نقل کرو, کہیں دکھا دو, ایک جگہ بھی مہاراج نے کہا ہو. انہوں نے ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں کیا اپائے کرنے ہیں, اس کے بارے میں گرو کیا کہہ رہا ہے, ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں سے کیسے آگے بڑھنا ہے, اس کے بارے میں گرو کیا کہہ رہا ہے, اس کے لیے انہوں نے سمتا بلاس لکھی. پرشن اتر کے مادھیم سے بھی کچھ گیان مل جاتا ہے, ان کے پتروں کے مادھیم سے بھی کچھ گیان مل جاتا ہے. تو ستپرش پر جب آپ کی شردھا آتی ہے, اس پر فیتھ آتا ہے, تو آپ اس کی بات کو ماننے کی تیاری کرتے ہو کہ میں نے جاننا ہے کہ گرودیو میرے لیے کیا کہہ رہے ہیں. جب اس کی بات کو شردھا سے پڑھتے ہو, سمجھنے کی کوشش کرتے ہو, ستسنگ دھیان سے شرون کرتے ہو, تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں جہاں کھڑا ہوں یہاں سے کیسے میں آگے بڑھوں گا. ہر چیز آپ کو پتہ لگ جائے گی. اسی لیے یدی آپ گرو کو دیکھو گے کہ ادھیات مارک میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, تو ڈر جاؤ گے آپ, لیکن جہاں کھڑے ہو وہاں سے چلو گے تو ڈرو گے نہیں. کل ہی بات چل رہی تھی, کوئی پریمی کہہ رہا تھا کہ مارگ بڑا کٹھن ہے, تو میں نے کہا مارگ تو کٹھن نہیں ہے, بہت آگے کی ابھی دیکھو گے تو آپ کو کٹھنائی پرتیت ہوگی. لیکن آج تو گرو کہہ رہا ہے کہ سادگی دھارن کرو, تو سادگی میں کیا کرو گے آپ؟ کھانے میں بڑے چسکے لیتے ہو, بڑے سواد لیتے ہو, بڑی سامگری اکٹھی کرتے ہو, بڑا گھر والی کو پریشان کرتے ہو کہ یہ بنا وہ بنا, پھر کھا کھا کے روگ خرید لیتے ہو, شریبی روگی کر لیتے ہو. یدی سادہ آہار کرو گے تو دال چاول سبزی روٹی کھاؤ گے, دودھ دہی کھاؤ گے, وہ بھی لمیٹڈ کوانٹیٹی میں, وہ بھی ٹائم پر, تو ان چیزوں کو بنانا کٹھن ہے یا سوادشت بھوجن بنانا کٹھن ہے؟ ہر گرہنی یہی کہے گی بھائی طرح طرح کے پکوان بنانا کٹھن ہے, سادہ آہار تو 15 منٹ میں تیار ہو جاتا ہے. تو سرل کو ہم کٹھن کہہ رہے ہیں. کٹھن کیوں ہے یہ؟ کیونکہ بگڑے ہوئے ہیں. کسی شرابی سے پوچھو کہ بھائی دودھ پیو شراب چھوڑ دو, وہ یہی کہے گا بھی یہ بڑا کٹھن کام ہے. اب شرابی کے لیے تو شراب چھوڑنا بڑا کٹھن کام ہے, تو یہ کام کٹھن ہے یا اس کے بگڑے ہوئے حالات کٹھنائی پیدا کر رہے ہیں؟ تو جب ہم بگڑے ہوئے ہیں تب ہم کو کٹھن پرتیت ہوتا ہے. یدی سیدھے سچے انسان بن جائیں ہم, تو پھر یہ جیون اتنا سرل ہو جائے گا آپ کا, اتنے کم پیسے کی ضرورت پڑے گی, اور اتنا کم سوچنے کی ضرورت پڑے گی, اور اتنی کم ویوستھا کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ ٹائم بچے گا ہی بچے گا آپ کے پاس. سوادھیائے کے لیے بھی ٹائم ہوگا, سمرن کے لیے بھی ٹائم ہوگا, پریوار چلانے کے لیے بھی ٹائم ہوگا. ہم بگڑ گئے ہیں, دیکھا دیکھی ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ صبح 8 بجے نہیں اور راتری کے 10 بجے تک ہم پیسے ہی کماتے رہتے, اور جو ٹائم بچا بھی پھر اس کے بارے میں आगे पैसा कमाने की सोचते रहते हैं, पैसा पैसा भोग विलास बस, इसके अलावा हमारी दुनिया कोई है ही नहीं। तो इसीलिए हमारे लिए ईश्वर का मार्ग कठिन है, अपने आप में ईश्वर का मार्ग कठिन नहीं है। किसी लेडी से पूछ लो भाई, सादे कपड़े पहनना कठिन है या फैशनेबल कपड़े पहनना कठिन है, तो हर लेडी कह देगी नहीं कठिन तो फैशनेबल कपड़े पहनना है, क्यों, रात दिन देखना पड़ता है क्या फैशन चल रहा है, इस फैशन का कपड़ा कहां मिल रहा है, इसके लिए पैसा कहां से आएगा, आप उसके लिए मन कितना बेचैन रहता है, सादगी में मन चैन में रहेगा, क्या कठिनाई है उसमें। तो कठिनाई का रास्ता तो फैशन करने का है, कठिनाई का रास्ता सादे वस्त्र पहनने का थोड़ी ना है कोई। तो ईश्वर के मार्ग पे चलने में यदि ईमानदारी से देखें तो सरलता है इसमें, कठिनाई नहीं है। कठिनाई इसलिए हमको प्रतीत होती है कि हम बिगड़े हुए इंसान हैं। तो इसलिए महाजी ने जब अध्यात्म मार्ग पर चलने की बात की तो कहां से स्टार्ट किया, संतराज पढ़ के देखना हो, वह कह रहे हैं प्रेमी जो तू गलतियां कर रहा है, जिसका पता है तू गलतियां कर रहा है, पहले उनसे निवृत्ति प्राप्त कर। यहां से अध्यात्म मार्ग शुरू हो रहा है। अब बताइए ये क्या कठिन, तू पाप कर रहा है, पता है मैं पाप कर रहा हूं, और इस पाप का परिणाम क्या निकलना है, इसका परिणाम तो दुख निकलना है, सजा निकलनी है इसका परिणाम, दुख का मतलब सजा। तो बताइए जिस कर्म से मुझको सजा मिलने वाली है उसको छोड़ना अकलमंदी है या नहीं है। तो गुरु की बात पढ़कर तो देखें कह क्या रहा गुरु, यदि मैं पापी हूं, गलत काम कर रहा हूं, रिश्वतें ले रहा हूं, दूसरों को झूठ बोलकर रेट ज्यादा ले रहा हूं, जो भी मैं गलत तरीके अपना रहा हूं, मुझे पता है, तो प्रकृति छोड़ेगी नहीं आपको, इसकी सजा मिलेगी आपको। जिस जिसका शोषण आपने किया है आपका भी उतना ही शोषण किया ही जाएगा कम से कम। उस समय आपको तो क्या बीतेगी कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन ईश्वर जानता है कि तेरे साथ न्याय हो रहा है, ईश्वर जानता है कि तेरे साथ न्याय हो रहा है। इस दुनिया में किसी की भी गर्दन अन्याय पूर्वक नहीं काटी जा सकती, जिसकी गर्दन काटी जा रही है उसके साथ न्याय ही हो रहा है, हमको नहीं पता। यदि गुरु साक्षात सामने होता तो वो खोल के चिट्ठा बता देता कि किस कर्म की सजा इस रूप में आज इसको मिल रही है, जबकि इस समय इसने कोई गलती नहीं की है, इस समय इसने कोई गलती नहीं करी है, फिर भी इसको ये सजा मिल रही है, ये किस कर्म की सजा भोग रहा है। तो हर मनुष्य इस प्रकृति चक्र में पिस रहा है अपने पास्ट कर्मों के अनुसार। इसीलिए गीता कह रही है भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, कि मैं अंदर बैठा बैठा क्या करता हूं, सारे प्राणियों को संसार में घुमाता हूं, भरमाता हूं। कैसे प्राणी, इस यंत्र रूपी शरीर में स्थित प्राणी, मैं इस यंत्र रूपी शरीर के अंदर रह रहा हूं, लेकिन इस यंत्र को अपना स्वरूप समझ रहा हूं। तो ये यंत्र प्रभु के अधीन काम करता है, मेरे अधीन काम नहीं करता, इसलिए मैं लाचार होकर संसार में जीता हूं। हर मनुष्य लाचार होकर जीता है क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि स्वतंत्र इच्छा नाम की कोई चीज नहीं होती। आप पढ़कर देखिए रामकृष्ण वचनामृत, कहते हैं स्वतंत्र इच्छा नाम की कोई चीज होती नहीं, स्वतंत्र इच्छा नहीं है, मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, पराधीन है, प्रकृति के अधीन है। इसीलिए गीता में ये बात क्यों लिखी होती भाई, या तो कह दो गीता गलत है, तो साफ साफ लिखवा है ईश्वर सर्वभूतानाम हृत देशे अर्जुन तिष्ठति, सारे प्राणियों का जो ईश्वर है, जो मालिक है, वो उनके हृदय में निवास करता है। तो सारे प्राणियों का जो ईश्वर है वो उनके हृदय में निवास करता है, और क्या करता है, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, और उनके प्रारब्ध के अनुसार वो अपनी माया से संसार में उनको घुमाता है। इसीलिए ईश्वर न्यायकारी है, हम न्यायकारी नहीं, हमको पता ही नहीं है पास्ट में हम क्या करके आए। तो इसीलिए अंतर्यामी ईश्वर की जो उपासना नहीं करता, उसको जानने की कोशिश नहीं करता, उससे संबंध स्थापित करने की कोशिश नहीं करता, वो अज्ञानी बनकर इस संसार में बेचैनी भोगता रहता है और बेचैनी की कमाई कर इस संसार से विदा हो जाता है। यह उसकी करनी है और यह उसका अंत है। तो इसीलिए यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो इस संसार में सार नाम की कोई वस्तु नहीं है। यदि इस संसार में सार नाम की कोई वस्तु है, वो ईश्वर है, जिसका अनुभव हमको नहीं है, जिसका पता हमको नहीं है। लेकिन जो अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले लोग हैं पूरी सिंसेरिटी से, वो इस रहस्य को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके अंदर पक्का निश्चय है कि ये सारा का सारा संसार चक्र यदि मनुष्य को चलाने के लिए दे दिया जाता तो अब तक ये कब का खत्म हो चुका होता। ये इसलिए सुरक्षित है क्योंकि ये प्रकृति ईश्वर के अधीन काम कर रही है। इस संसार में यदि मनुष्य की करनी देखो तो इस संसार को इतना पॉल्यूटेड कर दिया इस मनुष्य ने कि कई देश तो जीने लायक नहीं बचे, कई जगह का पानी पीने लायक नहीं बचा, हवा श्वास लेने लायक नहीं बची। ये हम जो संसारी ज्ञानी लोग हैं ना, ये उनकी करनी है, ये उनकी करनी है। इस प्रकृति का सर्वनाश कर देंगे जिस प्रकृति के आधार पर इनका जीवन चल रहा है। तो ये अंध बुद्धि है या जागरूक बुद्धि है, जरा विचार करके तो देखो। ये दुनिया का हाल किसने किया, साइंटिस्ट ने किया, टेक्नोलॉजिस्ट ने किया, और हम जैसे भोगियों ने किया। तो ईश्वर यदि जगत का रक्षक ना हो तो मनुष्य तो इसको बर्बाद कर देगा। तो इसलिए किस मनुष्य का अहंकार कर रहे हैं, कौन ज्ञानी है यहां पर? इसलिए ज्ञानी वही है जिसको ईश्वर का भेद मालूम है, और जागरूक इंसान वही है जो उस ईश्वर की आवश्यकता महसूस करता है, उसको जानने की कोशिश करता है। इसीलिए गुरु को दिल से जीवन में धारण करके, उस पर पूर्ण श्रद्धा करके, उसकी बात को सीखने की कोशिश करता है, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने की कोशिश करता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।